न्यू साउथ वेल्स में रोज आने वाले कोरोना मामले अभी भी नियंत्रण के पार। पिछले 24 घंटों में आए 199 स्थानीय मामले। क्वींसलैंड में 16 स्थानीय कोरोना मामलों के बाद राज्य सतर्क। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक की रेस से बाहर, सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों हार। अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में अभी भी रोज आने वाले स्थानीय मामलों की संख्या 200 के पार बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 199 स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच वेस्ट मीड अस्पताल के 36 कर्मचारी एकांतवास में हैं, क्योंकि उनका एक सहयोगी वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड पॉजिटिव पाया गया है। क्योंकि उसने कोविड ग्रस्त होते हुए भी पिछले हफ्ते अस्पताल में काम किया, इसलिए उसके 36 साथियों को अब संगरोध में जाना पड़ा। इस ताजा प्रकोप का साया दो नर्सिंग होम पर भी है। इस वक्त 53 मामले गहन देखभाल इकाइयों यानी कि ICU में हैं, जिनमें से 43 का टीकाकरण नहीं हुआ है और 5 मामले ऐसे हैं जो 20 से 30 साल के बीच हैं। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेज़िक्लिन का कहना है कि वो 29 अगस्त को प्रतिबंधों में ढील देना चाहती हैं और इसीलिए वो लोगों को आगे आने और टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।
6 million is the target I want to set by the end of August. We're at 3.9 million. I suspect we'll be at 4 million by the end of the week or in the next few days. And that is a target I'd like to set for New South Wales. And I'm really urging everybody to come forward, to listen to the health advice. If you have any concerns, go through your GP. But please know that the more of us that get vaccinated, the greater chance we have to live freely beyond August 29.
Queensland ne pichle 24 ghanton mein corona ke 16 sthaniya mamle darj kiye hain. पिछले 24 घंटों में राज्य में 34,000 परीक्षण किए गए और 16 नए स्थानीय मामले आने के बाद क्लस्टर की कुल संख्या 47 हो गई है। आपको बता दें कि नए मामलों में से 9 राज्य के विभिन्न स्कूलों में मौजूद प्रकोप से जुड़े हैं और 5 नए मामले पहले से ही पुष्ट किए गए मामलों के घरेलू या पारिवारिक संपर्क हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जेनेट यंग का कहना है कि इस प्रकोप से निपटने का सबसे अच्छा तरीका घर पर रहना या टीका लगवाना ही है।
That's why lockdowns work, because we know that the virus can burn out. So please just stay at home. So if you're uncertain, just stay home. And if you need assistance, please you can ring for help. Of course, anyone who needs food, you can go out and buy that food if you need it. Of course you can. But if you don't need to leave home, please don't leave home.
इस बीच फेडरल सरकार ने पुष्टि की है कि तत्काल उपयोग के लिए एस्ट्राजेनेका की अतिरिक्त 1.5 लाख खुराक क्वींसलैंड भेजी जा रही हैं। एक विश्लेषण से पता चला है कि अगर केवल 50% आबादी का टीकाकरण हो और कोरोना वायरस लॉकडाउन जारी रहे तो हर सप्ताह देश की अर्थव्यवस्था को $570 मिलियन का नुकसान होता है। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्रेडनबर्ग का कहना है कि देश में COVID-19 के प्रबंधन की वजह से आर्थिक लागत में गिरावट आती है, क्योंकि टीकाकरण की दर बढ़ जाती है। आर्थिक मॉडलिंग ने यह भी खुलासा किया कि अगर सरकारें छोटे और लॉकडाउन लगाने में जल्दबाजी नहीं करती है तो ये 5 गुना अधिक महंगा है। कोषाध्यक्ष जॉश फ्रेडनबर्ग कहते हैं कि 70% टीकाकरण दरों पर COVID-19 से निपटने में अर्थव्यवस्था पर प्रति सप्ताह $200 मिलियन का खर्च आएगा।
So there's one very clear message out of the economic modeling is that until we get to 70% and above vaccination rates, the economic imperative is that governments need to move fast to get on top of those cases. If they don't, we see lengthier and more severe lockdowns, which have a much more significant economic cost.
अब खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रूपी, एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया। आपको बता दें कि ई रूपी एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है और ये डिजिटल भुगतान के लिए एक संपर्क रहित और कैशलेस साधन है।
ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी।
भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जोरों पर है और इस बीच टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि विशेषज्ञ कोविड 19 वैक्सीन पर स्वास्थ्य सेवा की दिग्गज कंपनी जाइडस कैडिला के कुछ और आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो।
Some more data and analysis has been asked by the expert group, and hopefully we should be able to hear back from DCGI and subject expert committee about these issues.
पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और असम और मिजोरम के बीच हालिया सीमा तनाव पर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।
हमने इस मेमोरेंडम में जिक्र किया कि सीमा विवाद जो है पुराने हैं, वो सुलझने के लिए मिजोरम असम गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आग डालने का काम कर रहे हैं। वो वायलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंसाइटमेंट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, और ऐसा तथ्य सामने में आया देश के बाहर विदेशों से भी कई चीजें सोशल मीडिया और बाकी चीजों में उनका हस्तक्षेप।
वहीं असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्य मिजोरम के साथ सीमा विवाद का स्थायी शांतिपूर्ण समाधान चाहती है।
हम दोबारा बोलता हूँ, हम लोग पीस चाहता हूँ। We want permanent peaceful settlement, but definitely I won't want that our land should be given to others. हम लोग का जो जमीन है हम लोग का रहे, उन लोग का जमीन जो है उन लोग का रहे।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.78 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 74 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। टोक्यो में जारी खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेलों में भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए मुकाबले में करोड़ों खेल प्रेमियों को निराशा का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम विश्व चैंपियन बेल्जियम से 5-2 से हारकर स्वर्ण पदक की रेत से बाहर हो गई। आपको बता दें कि भारत अब कांस्य पदक के लिए खेलेगा। 51 वर्षीय दिग्गज पूर्व स्पिन गेंदबाज शेन वॉन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि वॉन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंग्लैंड में हैं और वो इस वक्त एकांतवास में हैं। जारी बयान में कहा गया है कि सुबह अस्वस्थ महसूस करने के बाद शेन वॉन ने शुरुआती परीक्षण कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां कल आंशिक बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल बारिश की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां आसमान बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल मौसम साफ रहेगा लेकिन दिन में तेज हवाओं की संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल बढ़िया धूप रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल मौसम साफ रहेगा। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।